लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिति की यात्रा पर हमारी अंतिम रिपोर्ट। जापान से परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु विश्व के नेताओं का आह्वान कर मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस अपनी चार दिवसीय प्रेरितिक यात्रा संपन्न कर टोक्यो से रोम के लिए रवाना हो गए हैं। टोक्यो के हानेदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जापान के वरिष्ठ प्रशासनाधिकारी प्रतिनिधिमंडल तथा कैथलिक धर्माध्यक्षों ने संत पापा को विदा किया। निपोन एयरवेज के 87879 विमान से 13.5 घंटे की हवाई यात्रा के उपरांत मंगलवार संध्या संत पापा फ्रांसिस रोम लौट रहे हैं। स्मरण रहे कि जापान रोम से लगभग 8 घंटे आगे है। कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस 19 नवंबर को रोम से थाईलैंड और जापान की 7 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के लिए रवाना हुए थे। इटली से बाहर उनकी यह 32वीं प्रेरितिक यात्रा थी। थाईलैंड से शनिवार 23 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस जापान पहुंचे थे। यहां उन्होंने राजधानी टोक्यो सहित द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घातक परमाणु बम विस्फोटों का रंगमंच बने नागासाकी और हिरोशिमा शहरों का दौरा किया। इन शहरों में उन्होंने परमाणु दुर्घटना में मारे गए लोगों को याद किया तथा इन प्राणघाती हमलों से बच निकले कुछ लोगों से मुलाकात कर विश्व में परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति चेतना जागरण का प्रयास किया। टोक्यो में उन्होंने 2011 के विनाशक सुनामी तूफान में मारे गए और विस्थापित हुए लोगों के लिए प्रार्थना अर्पित की। जापान में अपनी 4 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा समाप्त करने से पहले मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने टोक्यो स्थित परम धर्म पीठीय प्रेरितिक राज दूतावास में कार्यरत अधिकारियों से मुलाकात की तथा उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उनके जापानी पड़ाव के समय उनकी आवभगत के लिए संत पापा ने राज दूतावास के कर्मचारियों के साथ साथ एक बार फिर जापान के सरकारी और कलीसियाई अधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उगते सूर्य की भूमि जापान में उनके आगमन के क्षण से ही यहां के लोगों से मिलकर उन्हें जो आनंद मिला है उसके लिए वे प्रभु ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं। संत पापा फ्रांसिस की जापान यात्रा का लक्ष्य परमाणु हथियार विरोधी संदेश देने के साथ साथ जापान के कैथलिकों को उनके विश्वास में मजबूत करना था। जापानी कैथलिकों से संत पापा ने आग्रह किया कि वे अलगाव, एकाकीपन और उससे जुड़ी आत्महत्याओं जैसी समस्याओं का सामना विश्वास के बल पर करें। उन्होंने कहा कि ये समस्याएं प्रतिस्पर्धा और जापानी समाज में व्याप्त उन्मत्त गति का परिणाम हैं। उन्होंने जापानी कैथलिकों को परामर्श दिया कि वे करुणामय यीशु ख्रीस्त के पद चिन्हों पर चलकर निस्वार्थ प्रेम से अलगाव और एकाकीपन को साक्षात्कार में बदलने का प्रयास करें। जापान से विदा लेते समय मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सब मेरी प्रार्थनाओं और मेरे दिल में रहेंगे। जापान में मंगलवार प्रातः येसु धर्म समाज के सदस्यों से मुलाकात कर संत पापा फ्रांसिस ने अपनी जापानी यात्रा का समापन बड़े आत्मीय ढंग से किया। अपने पुरोहिताभिषेक के बाद से ही जॉर्ज बेरगोलियो यानी संत पापा फ्रांसिस जापान में मिशनरी कार्य के लिए आना चाहते थे, किंतु स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस विषय में अर्जेंटीना में संत पापा फ्रांसिस के छात्र रहे तथा इस समय जापान में येसु धर्म समाज के प्रांताध्यक्ष फादर रेंसो दे लुका ने वैटिकन मीडिया से कहा, जापान में ख्रिस्तीय धर्म के प्रथम मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर का अनुसरण कर संत पापा फ्रांसिस भी जापान आना चाहते थे। यही कारण है कि जब वे अर्जेंटीना में येसु धर्म समाज के प्रमुख थे तब उन्होंने 5 पुरोहितों को जापान में मिशनरी कार्यों के लिए भेजा था। फादर रेंसो दे लुका इन्हीं 5 पुरोहितों में से एक हैं। उन्होंने कहा, फादर बेरगोलियो ऐसे गुरुकुल अध्यक्ष थे जो गुरुकुल छात्रों के बिल्कुल निकट थे। हालांकि हम लोग 100 से अधिक थे, तथापि उनके पास हम सबके लिए समय रहा करता था। कभी कभी वे रसोई में जाकर छात्रों के संग खाना बनाने में भी जुट जाते थे। वे हमेशा हमारे समीप थे। उन्होंने कभी भी हमें ऐसा एहसास नहीं दिलाया कि वे हमसे बड़े अथवा हमसे महत्वपूर्ण हैं। टोक्यो में आते ही संत पापा फ्रांसिस ने जापानी धर्माध्यक्षों से कहा था कि जापान के प्रति हमेशा से ही उनका आकर्षण रहा है। उन्होंने कहा था, जापान मिशन की भूमि है और ऐसा भी संभव है कि इस देश के सौंदर्य ने मुझे इसके प्रति मोहित कर दिया था। टोक्यो में येसु धर्म समाज द्वारा संचालित प्रतिष्ठित सोफिया विश्वविद्यालय के आराधनालय में मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने ख्रीस्त त्याग अर्पित किया तथा विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक केंद्र में सेवानिवृत्त और रोगग्रस्त येसु धर्म समाजी पुरोहितों से मुलाकात कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तदोपरांत उन्होंने सोफिया कैथलिक विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात कर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कराया कि अत्याधुनिक नवीन तकनीकी तब तक बेकार रहेगी जब तक उसका प्रयोग और अधिक मानवीय एवं सरल समाज के निर्माण में नहीं किया जाता।
जापान की प्रेरित यात्रा के अंतिम पड़ाव पर संत पापा फ्रांसिस ने टोक्यो स्थित सोफिया विश्वविद्यालय का दौरा किया जो जापान के जेसुइट पुरोहितों द्वारा संचालित है। संत पापा ने वहां के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा,
Queridos hermanos y hermanas, me alegra mucho poder estar unos minutos con ustedes al final de mi visita apostólica।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि मेरी प्रेरित यात्रा के समापन पर जापान छोड़कर रोम लौटने से पहले कुछ मिनट आपके साथ व्यतीत कर रहा हूँ। इस देश में मेरा रुकना छोटा और व्यस्तता भरा था, किंतु मैं ईश्वर और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस देश का दौरा करने का अवसर मिला जिसको जानने की तीव्र अभिलाषा संत फ्रांसिस जेवियर को भी थी और जहां कई शहीदों ने अपने ख्रिस्ती विश्वास की गवाही दी है। इसके बावजूद कि ख्रिस्तियों की संख्या कम है, उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपसी सम्मान की भावना भविष्य में बढ़ता जाए। मैंने गौर किया कि जापानी समाज में जो निपुणता और व्यवस्था है उसमें किसी महान वस्तु के लिए एक तड़प है, एक और अधिक मानवीय सहानुभूतिपूर्ण एवं करुणामय समाज बनाने की एक गहरी ललक है। अध्ययन एवं चिंतन हर एक संस्कृति का हिस्सा है और आपकी जापानी संस्कृति अपने प्राचीन एवं समृद्ध धरोहर के लिए गौरवशाली है। जापान समग्र रूप से एशिया की सोच और धर्मों को एकीकृत करने तथा एक स्पष्ट प्रतिष्ठा के साथ संस्कृति के निर्माण में सक्षम रहा है। आशिकागा स्कूल जिसे संत फ्रांसिस जेवियर अत्यंत प्रभावित थे, वह ज्ञान को ग्रहण करने एवं हस्तांतरित करने में जापान की संस्कृति की क्षमता का उदाहरण है। अध्ययन, चिंतन एवं अनुसंधान केंद्र वर्तमान संस्कृति में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है जो उसके बेहतर भविष्य के लिए उसकी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता को प्रस्तुत करता है। चूंकि विश्वविद्यालय भावी नेताओं को प्रशिक्षित करने का प्रमुख स्थल है, यह आवश्यक है कि ज्ञान एवं संस्कृति का विस्तार शैक्षणिक संस्थानों के जीवन के हर आयाम को प्रेरित करे, इसे अधिक समावेशी बनाए तथा अवसर एवं सामाजिक उन्नति प्रदान करे। हमारे संस्थानों को निर्माणात्मक और प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित करने के लिए हमें हमेशा सच्ची प्रज्ञा की आवश्यकता है। वर्तमान जापान के रूप में प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से उन्मुख समाज में यह विश्वविद्यालय न केवल बौद्धिक विकास का केंद्र हो बल्कि एक ऐसा स्थान भी हो जहां एक बेहतर समाज और एक अधिक आशामय भविष्य आकार ले सके। संत पापा ने कहा कि मेरे प्रेरित विश्व पत्र लाउदातो सी की भावना में मैं जोड़ना चाहता हूं कि प्रकृति के प्रति प्रेम जो एशियाई संस्कृति में खास है, यहां पृथ्वी के संरक्षण के लिए एक सामान्य और दूरदर्शी चिंता में अभिव्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो कि हमारा सामान्य घर है। हम यह ना भूलें कि एक सच्ची मानवता एक नए संश्लेषण के लिए निमंत्रण दे रही है जो हमारी तकनीकी संस्कृति के बीच बंद दरवाजे के नीचे धीरे से रिसने वाली धुंध के समान अज्ञात स्थिति में है। सोफिया विश्वविद्यालय की विशेषताओं पर गौर करते हुए संत पापा ने कहा कि सोफिया विश्वविद्यालय मानवतावादी, ख्रिस्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान से रेखांकित है। इसकी स्थापना के समय से ही विश्वविद्यालय विभिन्न देशों के प्रोफेसरों से संपन्न है। यह उस समय भी संपन्न बना रहा जब राष्ट्रों के बीच संघर्ष चल रहे थे। सभी प्रोफेसर जापान के युवाओं को अपना उत्तम अर्पित करना चाहते हैं। इसी भावना से आपने यहाँ और विदेशों में भी कई तरह के जरूरतमंद लोगों की मदद की है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय की पहचान अधिक मजबूत बने ताकि आज के महान तकनीकी विकास को अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण एवं पारिस्थितिक रूप से जिम्मेदार शिक्षा की सेवा में लगाया जा सके। संत इग्नासियस की परंपरा जिस पर सोफिया आधारित है, उससे प्रोफेसरों एवं छात्रों को समान रूप से एक माहौल बनाने हेतु प्रेरित होना चाहिए जो चिंतन एवं विवेक को बढ़ावा दे। विश्वविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी चुनाव करने, जिम्मेदारी लेने और मुक्त अंतःकरण होने सीखे बिना स्नातक पूरा ना करे। हर परिस्थिति में चाहे वह जटिल ही क्यों ना हो, वे अपने व्यवहार में न्यायी, मानवीय, विवेकशील एवं जिम्मेदार हो सकें और खुद को कमजोर लोगों के रक्षक के रूप में दिखा सकें। वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाएं, जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है जहाँ शब्द एवं कार्य बहुत भ्रामक और धोखेबाज हो गए हैं। संत पापा ने कहा कि यीशु समाज एवं स्वयं उन्होंने इस वर्ष के लिए जो प्रस्ताव रखा है, वह स्पष्ट है कि विश्वव्यापी स्तर पर युवाओं का साथ देना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और सभी यीशु समाजी संस्थाओं को इस बात को बढ़ावा देना चाहिए। युवा पर सिनेट और इसके दस्तावेज में साफ है कि विश्वव्यापी कलीसिया विश्व के युवाओं की ओर आशा एवं दिलचस्पी से देख रही है। संत पापा ने सोफिया के प्रोफेसरों को संबोधित कर कहा कि विश्वविद्यालय को पूरी तरह युवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो न केवल उत्तम शिक्षा प्राप्त करें बल्कि शिक्षा का हिस्सा बने, अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करें एवं भविष्य के लिए अपनी आशा और दर्शन को बांट सकें। सोफिया की ख्रिस्ती एवं मानवीय परंपरा पूरी तरह से एक समान है जिसका मैंने उल्लेख किया है और जिसका अर्थ है कि हमारी दुनिया के गरीब और बहिष्कृत लोगों के साथ चलना है। विश्वविद्यालय जो अपने मिशन पर केंद्रित है, उससे हमेशा एक द्वीप समूह बनाने के लिए खुला होना चाहिए जो वास्तविकताओं को जोड़ने में सक्षम हो, जिसे सांस्कृतिक एवं सामाजिक रूप से अलग माना जा सकता है। दूरियों और पृथकता को कम करने के उद्देश्य से एक शैक्षणिक दृष्टिकोण लाने के प्रयास में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों को भी विश्वविद्यालय के जीवन एवं पाठ्यक्रम में रचनात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ केवल कुछ लोगों के लिए सीमित ना हो, किंतु यह न्याय एवं आम अच्छाई की सेवा के प्रयास से लगातार अवगत हो, ताकि जिस क्षेत्र में वे काम करने के लिए बुलाए जाएं, उस क्षेत्र में हर एक अपनी सेवा दे सके। यह एक ऐसी चिंता है जो हर किसी का ख्याल रखती है। जैसा कि संत पेत्रुस की सलाह को संत पौलुस याद दिलाते हुए कहते हैं, हम गरीबों को ना भूलें। संत पापा ने अंत में सोफिया परिवार के लिए कामना की कि यह संदेश और आज की मुलाकात उनके जीवन एवं विश्वविद्यालय में फल उत्पन्न करे। उन्होंने कहा,
El Señor y su iglesia cuentan con ustedes para que participen en la misión de buscar, hallar y expandir la sabiduría divina y ofrecer alegría y esperanza a la sociedad actual.
प्रभु और कलीसिया खोजने, पाने और प्रसार करने की मिशन में साझा करने हेतु आप पर भरोसा करते हैं, ताकि आप वर्तमान समाज को खुशी और आशा प्रदान कर सकें। कृपया मेरे लिए और जिन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है उनके लिए प्रार्थना करें। उन्होंने सोफिया विश्वविद्यालय से विदा लेते हुए कहा, अब मैं जापान से प्रस्थान करने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से समस्त जापान के लोगों को मेरी प्रेरित यात्रा के दौरान उनके सुंदर स्वागत एवं स्वीकृति के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा।
Les aseguro que los tendré presente en mi corazón y en mi oración. Muchas gracias.
मंगलवार सुबह सोफिया कैथोलिक विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात करने के साथ ही संत पापा फ्रांसिस की जापान की प्रेरितिक यात्रा संपन्न हुई। संत पापा फ्रांसिस जापान के समय अनुसार 11:30 बजे हनेदा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अल निपोन एयरवेज द्वारा वापस रोम के लिए रवाना हुए। हनेदा हवाई अड्डे पर संत पापा का आधिकारिक रूप से विदाई समारोह संपन्न हुआ। परंपरा अनुसार संत पापा फ्रांसिस विमान में उपस्थित सभी पत्रकारों का अभिवादन कर उनका साथ देने और उनके कठिन कामों के लिए सहृदय धन्यवाद दिया। विमान द्वारा संत पापा जापान, रूस, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातोनिया, लातवानिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और क्रोएशिया होते हुए इटली प्रवेश करेंगे और 13.5 घंटे की यात्रा के बाद रोम के समय अनुसार 5:05 पर फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पधारेंगे। संत पापा जिन देशों के ऊपर से होते हुए पार करेंगे उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम पर तार संदेश प्रेषित कर देश के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करेंगे और सुख समृद्धि खुशहाली की प्रभु से याचना करेंगे। संत पापा फ्यूमिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचकर रोम स्थित संत मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर पोपोली रोमानी माता मरियम के चरणों पर पुष्प सुमन अर्पित करेंगे और सुखद प्रेरितिक यात्रा के लिए धन्यवाद देंगे। इसके बाद संत पापा वाटिकन अपने निवास स्थान आएंगे। इस तरह संत पापा की 32वीं विदेश प्रेरितिक यात्रा संपन्न होती है।
Vieni Santo Spirito,
इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।